आरंभिक कथन।
एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार, अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
परिचय।
तो आज हम गोता लगा रहे हैं ग्लेनन डॉयल की 2020 में आई किताब अनटेम्ड। ये किताब सिर्फ एक संस्मरण या सेल्फ हेल्प गाइड नहीं है, इसने तो जैसे एक तरह की सांस्कृतिक हलचल मचा दी है।
बिल्कुल। ग्लेनन डॉयल जो जानी मानी अमेरिकी लेखिका हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और टुगेदर राइजिंग नाम की संस्था की संस्थापक, उनकी ये किताब उन महिलाओं के लिए बहुत मायने रखती है जिन्हें लगता है कि समाज ने उन्हें किसी खांचे में फिट करने की कोशिश की है।
हाँ, मतलब पालतू बनाने की कोशिश।
बिल्कुल सही कहा, पालतू बनाया गया है। तो ये एक तरह से आप कह सकती हैं कि आज़ादी का घोषणा पत्र बन गई है उनके लिए।
हाँ, और ये कहानी खुद ग्लेनन के जबरदस्त व्यक्तिगत बदलाव की भी है। कैसे वो एक मशहूर ईसाई मॉमी ब्लॉगर, एक पत्नी और माँ की छवि से निकली और एक ऐसी महिला बनी जिन्होंने अपनी अंदर की आवाज, जिसे वो नोइंग कहती हैं,
हाँ नोइंग या अंतर्ज्ञान,
उसे सुनने के लिए अपनी पूरी जिंदगी को दांव पर लगा दिया। और मुझे लगता है ये सुनना आज इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ये हमें अपनी जिंदगी की सच्चाइयों पर थोड़ा सवाल उठाने की हिम्मत देता है।
बिल्कुल सही कहा। ये किताब यही दिखाती है कि कैसे उन्होंने समाज की नजरों में अच्छा बनने की दौड़ छोड़ दी ताकि वो सच में आजाद हो सकें। और उन्होंने हमें कुछ नए शब्द भी दिए हैं ना, जैसे सामाजिक उम्मीदों के लिए पिंजरे,
केजेस, हाँ,
और उस गहरी अंदरूनी समझ के लिए नोइंग,
कालानुक्रमिक।
तो चलिए थोड़ा पीछे चलते हैं, ग्लेनन की जिंदगी के सफर को समझने की कोशिश करते हैं। वर्जीनिया के एक उपनगर में उनका जन्म हुआ। बचपन से ही काफी संवेदनशील थी ऐसा जिक्र है।
हाँ, बहुत ज्यादा, मतलब वो चीजों को बहुत गहराई से महसूस करती थी।
और यही संवेदनशीलता उनके लिए एक चुनौती बन गई फिर।
हाँ बिल्कुल, उन्हें बचपन में ही ये महसूस कराया गया कि भाई इतना ज्यादा महसूस करना ये तो एक समस्या है। तो उन्होंने अपनी भावनाओं को, आप कह सकते हैं, दबाना सीख लिया, दूसरों को खुश करने वाला व्यवहार अपना लिया। देखा जाए तो ये उनके पहले अदृश्य पिंजरे की शुरुआत थी।
ये तो काफी दुख की बात है। और फिर सिर्फ 10 साल की उम्र में बुलिमिया।
हाँ, खाने का विकार, ये शायद भावनाओं से निपटने का या शायद नियंत्रण पाने का एक भ्रमित तरीका बन गया। और यहीं से उन्होंने खुद को नज़रअंदाज करना सीखा, ये मान लिया कि उनका असली रूप वो शायद स्वीकार करने लायक ही नहीं है।
फिर किशोरावस्था और शुरुआती जवानी में
बुलिमिया की जगह शराब ने ले ली। यूनिवर्सिटी में भी वो बाहरी संकेतों जैसे दूसरों की मंजूरी, सफलता, इनके पीछे भागती रही, अंदर से भटकी हुई।
लेकिन फिर 26 साल की उम्र में एक बड़ा मोड़ आया, अनियोजित गर्भवती।
हाँ, वो उनके लिए जैसे एक सच्चाई का पल था, क्लैरिटी मिली, उन्होंने शराब छोड़ने और माँ बनने का फैसला किया।
पर क्या ये आज़ादी थी या एक और तरह का?
अच्छा सवाल है, कह सकते हैं कि ये पूरी तरह से आज़ादी नहीं थी। उन्होंने एक नया, समाज को स्वीकार्य पिंजरा चुना, अच्छी माँ, समर्पित पत्नी का।
क्रेग मिल्टन से शादी, 3 बच्चे।
हाँ, चेस, टिश, अमा, वो टीचर बनी, बाहर से सब ठीक लग रहा था, एक सफल पारिवारिक जीवन।
और फिर आया 2009, मोमेस्ट्री ब्लॉग।
हाँ, ये बहुत दिलचस्प था क्योंकि यहाँ उन्होंने अपनी मुश्किलों पर, नशे की लत, विश्वास के संकट, माँ बनने की चुनौतियाँ, इन सब पर बहुत खुलकर, बहुत ईमानदारी से लिखा।
कच्ची ईमानदारी।
बिल्कुल, कच्ची ईमानदारी। और लोगों ने, खासकर महिलाओं ने, इससे बहुत जुड़ाव महसूस किया।
उन्होंने वो ब्रूटफुल शब्द भी यहीं गढ़ा था ना।
हाँ, मतलब जिंदगी एक ही समय में क्रूर और सुंदर होती है। उनका ब्लॉग वायरल हो गया, लाखों का ऑनलाइन समुदाय बन गया।
और इसी से फिर 2013 में पहली किताब आई, कैरी ऑन वॉरियर।
हाँ, और वो एक प्रिय ईसाई मॉमी ब्लॉगर बन गई। लेकिन ये सफलता भी, जैसा उन्होंने बाद में महसूस किया, एक और तरह का पिंजरा ही साबित हुई। बिल्कुल। और फिर 2016 में आई लव वॉरियर, इसमें उन्होंने अपने पति के विश्वासघात के बाद अपनी शादी को बचाने के दर्दनाक सफर के बारे में लिखा।
इसे तो ओपरा विनफ्रे ने भी चुना था।
हाँ, ओपरा ने चुना, और ये किताब रिश्ते निभाने की प्रतिबद्धता का प्रतीक बन गई। ग्लेनन उस वक्त अपनी सफलता के शिखर पर थी, कह सकते हैं।
और यही कहानी का सबसे नाटकीय मोड़ आता है।
हाँ, लव वॉरियर के टूर से ठीक पहले
एक इवेंट में उनकी नजरें फुटबॉल स्टार एबी वॉम्बैक से मिलती हैं।
और ये कोई आम मुलाकात नहीं थी। ग्लेनन को एक पल में एक बहुत गहरा, जिसे अनदेखा ना किया जा सके, वैसा कनेक्शन महसूस हुआ।
वो नोइंग वाला पल?
बिल्कुल, ये वही था जिसे वो नोइंग कहती हैं, उनकी आत्मा की आवाज जो चीख चीख कर कुछ कह रही थी।
सोचिए जरा, ये सच्चाई उनकी जिंदगी की बाकी हर सच्चाई से टकरा रही थी। वो शादीशुदा थीं, ईसाई आइकन थीं।
हाँ, उनका पूरा करियर, उनकी पहचान उनके पति और परिवार पर टिकी थी।
तो इस नई सच्चाई को अपनाने का मतलब था सब कुछ तोड़ देना, अपनी पूरी दुनिया।
अनटेम्ड इसी तोड़ने और फिर से बनाने की कहानी है। क्रैक से अलग होना, एबी के साथ अपने रिश्ते को स्वीकार करना,
बच्चों, समाज, अपने लाखों फॉलोअर्स के सामने अपनी सच्चाई के साथ खड़ा होना।
और ये सिर्फ पार्टनर बदलने की कहानी नहीं थी, ये तो अपने जीने का पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम बदलने की कहानी थी।
हाँ, दूसरों को खुश करने की आदत, अच्छी लड़की बने रहने का दबाव,
अपनी इच्छाओं को दबाने की सालों की कंडीशनिंग, इन सबसे बाहर निकलने की कहानी।
और इसका नतीजा क्या हुआ? विरासत क्या रही?
नतीजा ये कि वो मॉमी ब्लॉगर की पहचान से कहीं आगे निकल गईं, एक ग्लोबल आवाज बन गईं। आज वो नारीवाद और समकालीन आध्यात्मिकता पर एक महत्वपूर्ण विचारक मानी जाती हैं।
और उनकी संस्था टुगेदर राइजिंग ने भी तो बहुत काम किया है।
हाँ, उसने जरूरतमंद परिवारों के लिए करोड़ों डॉलर जुटाए हैं।
और सांस्कृतिक तौर पर देखें तो
अनटेम्ड, पिंजरे, नोइंग, ये शब्द अब आम बातचीत का हिस्सा बन गए हैं।
बिल्कुल, इस किताब में अनगिनत लोगों को, मुझे लगता है, एक तरह की अनुमति पर्ची दी है अपनी जिंदगी पर सवाल उठाने की, अधूरे रिश्तों या नौकरियों से बाहर निकलने की, ज्यादा प्रामाणिक जीवन जीने की हिम्मत दी है।
इसने पारंपरिक भूमिकाओं पर भी तो एक नई बहस छेड़ी है।
हाँ बिल्कुल, और मानवीय स्तर पर देखें तो उन्होंने दिखाया कि कमजोर दिखने में अपनी भावनाओं को स्वीकार करने में कितनी ताकत है। उन्होंने परिवार की एक ज्यादा समावेशी परिभाषा गढ़ी।
शायद सबसे बड़ी विरासत यही है कि उन्होंने इस विचार को चुनौती दी कि महिलाओं की पहली जिम्मेदारी हमेशा दूसरों के लिए जीना है।
सही कहा, उन्होंने कहा आपकी पहली जिम्मेदारी खुद के प्रति सच्ची होना है।
मूल दर्शन और मूल्य।
तो ये तो ग्लेनॉन की कहानी, एक जबरदस्त सफर। लेकिन इस कहानी के पीछे का उनका नजरिया क्या है, उनका मूल दर्शन क्या है जो इतने लोगों को छूता है?
उनका केंद्रीय दर्शन बहुत साफ है और काफी शक्तिशाली भी। अपनी अंदरूनी सच्चाई, जिसे वो नोइंग कहती हैं, उसे बाहरी अपेक्षाओं यानी पिंजरों से ऊपर रखना।
ये नोइंग असल में है क्या? क्या ये बस इंट्यूशन है, गट फीलिंग या कुछ और?
ये गट फीलिंग से ज्यादा गहरा है, ऐसा वो मानती है। द नोइंग वो आदिम सहज ज्ञान की आवाज है जो हम सबके अंदर होती है।
अच्छा,
ग्लेनॉन का मानना है कि हम इसके साथ पैदा होते हैं, लेकिन समाज, संस्कृति, परिवार, वो धीरे धीरे हमें से अनसुना करना सिखा देते हैं।
तो एक सच्चा भरा पूरा जीवन जीने के लिए इसे सुनना और इस पे भरोसा करना जरूरी है।
और ये पिंजरे और पालतू बनाना, ये कॉन्सेप्ट्स भी बहुत पावरफुल लगते हैं।
हाँ बहुत। पिंजरे वो सामाजिक नियम, भूमिकाएं, उम्मीदें, मान्यताएं हैं जो हमें, खासकर महिलाओं को, सीमित करती हैं। जैसे अच्छी बेटी होनी चाहिए, अच्छी पत्नी बनो, सफल प्रोफेशनल दिखो, ये सब एक तरह के खांचे हो सकते हैं,
अदृश्य दीवारें।
बिल्कुल। और पालतू बनाना, टेमिंग, वो प्रक्रिया है जिससे हमें इन पिंजरों में रहना सिखाया जाता है। यहां तक कि हम अपनी कैद को ही सुरक्षा समझने लगते हैं
और अपनी असली जंगली अनटेम्ड प्रकृति भूल जाते हैं।
हाँ, वो चिड़ियाघर वाली चीता टैबिथा का उदाहरण उन्होंने इसीलिए दिया था, वो इसी बात को समझाने के लिए था।
बिल्कुल। और दर्द को लेकर भी उनका नजरिया काफी अलग है, पारंपरिक सोच से हटकर।
हाँ, वो मानती है कि दर्द कोई दुश्मन नहीं बल्कि एक जरूरी संदेश वाहक है, मैसेंजर।
अच्छा, कैसे?
ये बताता है कि हम कहीं ना कहीं अपनी सच्चाई से भटक रहे हैं या खुद के साथ शायद धोखा कर रहे हैं। लक्ष्य ये नहीं कि हमेशा खुश रहें।
हाँ, जो कि शायद मुमकिन भी नहीं है।
बिल्कुल, लक्ष्य ये है कि हम सब कुछ महसूस करने की हिम्मत रखें, खुशी भी, गम भी, गुस्सा भी।
वही ब्यूटीफुल वाली बात फिर से आ गई, जिंदगी की सच्चाई। शायद इसी में है कि वो एक साथ मुश्किल और खूबसूरत है।
एकदम, दर्द को महसूस करके उससे सीखना और उसे बदलाव की ताकत बनाना।
और फिर कल्पना का महत्व, इमेजिनेशन एज ए रेवोल्यूशनरी एक्ट।
हाँ, ग्लेनॉन कहती हैं कि कल्पना करना एक क्रांतिकारी काम है। हम वो जिंदगी नहीं जी सकते जिसकी हम पहले कल्पना ही नहीं कर सकते।
सही बात है।
हमें अपनी दिव्य कल्पना का इस्तेमाल करके अपने लिए, अपने परिवार के लिए और दुनिया के लिए सबसे सच्ची और सुंदर संभावनाओं की तस्वीर बनानी होगी। पहले सोचना होगा कि हमें चाहिए क्या।
इन सब बदवाहों के पीछे और इस दर्शन के पीछे उनकी अपनी पर्सनल प्रेरणा क्या थी? इतना बड़ा कदम उठाने की हिम्मत कहाँ से आई?
देखिए, दो मुख्य प्रेरणाएं थी, जैसा वो बताती हैं। पहली, प्रामाणिकता की एक गहरी रूहानी प्यास। दिखावे की जिंदगी जीने की कीमत वो उनके लिए असहनीय हो गई थी। एबी से मिलना उस चिंगारी को आग बनाने जैसा था, उत्प्रेरक बना।
और दूसरी
और शायद ज्यादा महत्वपूर्ण, वो अपने बच्चों के लिए, खासकर अपनी बेटी टिश के लिए, आजादी का एक जीता जागता उदाहरण बनना चाहती थी।
ये दिखाना कि
एक औरत अपनी आत्मा की आवाज कैसे सुनती है, अपनी जिंदगी खुद कैसे बनाती है और बिना किसी माफी के खुशी से कैसे जीती है, एक परफेक्ट माँ नहीं बल्कि एक सच्ची माँ बनकर।
और मुश्किलों से लड़ने का उनका तरीका भी पारंपरिक मजबूत बनो वाले रवैये से अलग है। वो समर्पण और भेद्यता की बात करती हैं।
हाँ, उनका मंत्र है, हम कठिन काम कर सकते हैं।
वी कैन डू हार्ड थिंग्स।
हाँ, इसका मतलब ये नहीं कि हमें दर्द नहीं होगा या हम कभी गिरेंगे नहीं। इसका मतलब है कि हम मुश्किल को स्वीकार करते हैं, दर्द का सम्मान करते हैं और फिर भी अक्सर दूसरों के सहारे आगे बढ़ते रहते हैं।
इसके लिए वो कुछ कदम भी बताती हैं, है ना? जैसे,
हाँ, मोटे तौर पर तीन कदम कह सकती हैं। पहला, सब कुछ महसूस करो, फील इट ऑल, सुन्न मत बनो, दर्द हो रहा है तो उसे महसूस करो।
दूसरा,
सबक सुनो, लिसन फॉर द लेसन, ये दर्द क्या सिखाने की कोशिश कर रहा है, इसमें क्या मैसेज छिपा है।
और तीसरा,
बोझ साझा करो, शेयर द बर्डन, अकेले मत रहो, अपने भरोसे के लोगों, अपने पौध जैसे दोस्त, बहन, पार्टनर पर निर्भर रहो, अपनी मुश्किलों को खुलकर बताओ।
अकेले बोझ उठाने की जरूरत नहीं है।
बिल्कुल नहीं।
इस तरह देखने पर तो मुश्किलें रुकावटें नहीं लगती, वो तो जैसे खुद को निखारने, अपने सच के करीब आने का जरिया बन जाती हैं।
बिल्कुल, वो क्रूसिबल बन जाती हैं, एक भट्टी जो झूठ को जलाकर सच को सामने लाती है।
तीन निर्णायक मोड़ लिए।
चलिए, अब उन खास पलों पर आते हैं जिन्होंने ग्लेनॉन की जिंदगी की दिशा ही बदल दी। आपने जिक्र किया था, पहला तो वो चिड़ियाघर वाला किस्सा है, टैबिथा चीता वाला, वो क्या था? बिल्कुल,
हाँ, वो एक फैमिली ट्रिप पर सफारी पार्क गई थी, वहां उन्होंने टैबिथा नाम की एक चीता देखी। जू कीपर ने बड़े गर्व से बताया कि टैबिथा कैद में ही पैदा हुई और पली बड़ी है, पूरी तरह पालतू हो चुकी है,
मतलब अपनी जंगली प्रवृत्ति भूल चुकी थी।
हाँ बिल्कुल, और वो मजे से एक जीप के पीछे बंधी नकली गुलाबी खरगोश का पीछा कर रही थी। और ग्लेनॉन को उसमें अपनी झलक दिख गई।
एग्जैक्टली।
उन्हें लगा कि वो भी उस चीता की तरह है, एक ताकतवर जंगली जीव जिसे इतना सीधा बना दिया गया है कि वो नकली बेमतलब के खरगोशों
जैसे समाज की मंजूरी, बाहरी सफलता, अच्छी औरत का खिताब,
हाँ, इन सब के पीछे भाग रही है, जबकि इसकी असली ताकत, उसकी अपनी इच्छाएं कहीं दबी पड़ी हैं। ये एक बहुत शक्तिशाली बिंब था उनके लिए। इसने उनके अंदर पल रहे असंतोष को एक स्पष्ट तस्वीर दे दी।
पहली बार शायद उन्हें शिद्दत से महसूस हुआ कि वो कैद में है।
हाँ, दूसरा निर्णायक मोड़ जाहिर है एबी वॉम्बैक से मिलना था।
हाँ, वो पल एक लिटरी इवेंट, बस नजरें मिली और
एक बिजली सी कौंधी। वो कहती हैं कि ये सोची समझी बात नहीं थी, ये एक शारीरिक एहसास था, जैसे पेट में कुछ हुआ हो। उनकी नोइंग, उनकी अंतरात्मा पूरी शिद्दत से कुछ कह रही थी।
इस एक पल ने अनटेम जिंदगी के विचार को, जो शायद अब तक एक थ्योरी थी,
उसे भयानक रूप से असली बना दिया। अब उनके सामने एक सीधा चॉइस था, या तो वो जिंदगी को जीती रहें जो उनसे अपेक्षित थी, या फिर वो इस अनजान लेकिन गहरी सच्चाई का सम्मान करें, भले ही इसका मतलब सब कुछ तबाह करना हो।
हाँ, यहीं से अनटेम्ड की असल कहानी शुरू होती है।
और तीसरा मोड़ उनकी बेटी टिश से जुड़ा है, ये भी बड़ा दिलचस्प है।
हाँ, जब वो एबी से मिलने के बाद अपने अंदरूनी उथल पुथल से गुजर रही थी, तब उनकी 10 साल की बेटी टिश, जो सॉकर खेलना बहुत पसंद करती थी,
हाँ,
उसने कहा कि वो टीम छोड़ना चाहती है। क्यों?
क्योंकि अब इसमें मजा नहीं आता।
ओह, तो ग्लेनॉन का पहला रिएक्शन क्या था? शायद वही जो ज्यादातर पेरेंट्स का होता, नहीं बेटा, हार नहीं मानते, कोशिश करते रहो।
बिल्कुल, उनके अंदर की कंडीशनिंग यही कह रही थी, विजेता कभी हार नहीं मानते। लेकिन तभी उन्हें एहसास हुआ
क्या
कि वो अपनी बेटी को भी वही पालतू बनाना सिखा रही हैं, उसे अपनी अंदर की आवाज को अनसुना करना सिखा रही हैं।
ओह, और उन्होंने खुद को रोका?
हाँ, उन्होंने खुद को रोका और टिश से कहा, ठीक है, तुम छोड़ सकती हो।
वाह,
ये पेरेंटिंग का एक छोटा सा लेकिन क्रांतिकारी कदम था। अपनी बेटी की नोइंग का सम्मान करके उन्होंने अपनी नोइंग का सम्मान करने के अपने इरादे को और पक्का किया।
उन्होंने सीखा कि खुद पर भरोसा करना सबसे जरूरी सबक है
और ये सिखाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप खुद इसे जी कर दिखाएं।
एक और मोड़ का जिक्र करना चाहिए, शायद वो द्वीप परिवार बनाने वाला। तलाक के बाद उन्होंने जिस तरह से परिवार को संभाला।
हाँ, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। तलाक के बाद उन्होंने और क्रेग ने बच्चों के सामने टूटे हुए घर वाली कहानी नहीं सुनाई।
उन्होंने क्या कहा?
उन्होंने कहा, हमारा परिवार टूट नहीं रहा बल्कि फैल रहा है। अब ये एक ऐसा परिवार है जो दो घरों में रहता है। बाद में जब एबी उनकी जिंदगी का हिस्सा बनी तो ये ढांचा फिर से बदला और विकसित हुआ। ये उनके दर्शन का एक तरह से अमली मुजाहिरा था
कि जब कोई पुराना ढांचा काम ना करे तो आप रोने धोने की बजाय
कुछ नया ज्यादा खूबसूरत बनाने की हिम्मत कर सकते हैं, कल्पना कर सकते हैं।
मानवीय सबक और चिंतन।
ग्लेनन डॉयल की कहानी बहुत पर्सनल है जाहिर है, लेकिन इसमें ऐसे सबक छिपे हैं जो हम सबके लिए मायने रखते हैं, है ना? आज की जिंदगी में भी वो बातें लागू होती हैं।
बिल्कुल। पहला और सबसे बड़ा सबक शायद यही है कि अपनी अंदर की आवाज, अपनी नोइंग को अनसुना करने की कीमत बहुत भारी पड़ सकती है।
किस तरह की कीमत?
ये कीमत नशे, डिप्रेशन, रिश्तों में कड़वाहट या बस एक खालीपन के एहसास के रूप में चुकानी पड़ सकती है।
जबकि अपनी सच्चाई के साथ जीना, भले ही वो रास्ता मुश्किल हो।
हाँ, मुश्किल तो होता है कई बार।
हाँ, मुश्किल तो होता है कई बार।
हाँ, पर वो असली आजादी और सुकून देता है। हम में से कितने ही लोग दूसरों की उम्मीदों के बोझ तले दबावा महसूस करते हैं, है ना?
बिल्कुल। और दर्द को देखने का नजरिया, ये माना कि दर्द कोई नाकामी नहीं बल्कि एक जरूरी सूचना है।
हाँ, उसे दबाने या उससे भागने के बजाय उसे महसूस करना, सुनना कि वो क्या कह रहा है, ये जिंदगी की मुश्किलों का सामना करने का एक ज्यादा सेहतमंद तरीका लगता है।
तीसरा सबक है सफलता और खुशी को फिर से परिभाषित करना। क्या सफलता सिर्फ बाहरी चीजें हैं या फिर अपने अंदरूनी सच के साथ तालमेल में जीना ज्यादा बड़ी सफलता है?
हाँ, समाज के पैमानों से हटकर ये सोचना कि मेरे लिए सच्ची जिंदगी का मतलब क्या है, ये सवाल पूछना ही अपने आप में एक कदम है।
और चौथा, अकेलापन महसूस न करना। उनकी कहानी दिखाती है कि मुश्किलों में दूसरों का सहारा लेना।
हाँ, अपनी कमजोरियां जाहिर करना, बोझ बांटना, ये कमजोरी नहीं ताकत है।
वो कहती है ना, वी कैन डू हार्ड थिंग्स।
हाँ, खासकर जब हम एक दूसरे का साथ दें, अपने पॉट पर भरोसा करें।
और आखिर में ये उम्मीद के बदलाव मुमकिन है, किसी भी उम्र में, किसी भी हालात में।
हाँ, हम अपनी जिंदगी की कहानी को फिर से लिख सकते हैं। हम अपने अतीत के फैसलों के कैदी नहीं हैं। ये एक बहुत बड़ी तसल्ली देने वाली बात है, मुझे लगता है।
तीन अंतिम निष्कर्ष।
तो इस गहरी चर्चा के अंत में अगर हमें ग्लेनन डॉयल की कहानी और अनटेम्ड के दर्शन से तीन मुख्य बातें निकालनी हों, तीन टेकअवेज, तो वो क्या होंगी?
पहली, एक भावनात्मक अंतर्दृष्टि। वो ये कि जिंदगी अक्सर एक ही समय पर क्रूर और सुंदर होती है।
ब्रूटिफुल।
ब्रूटिफुल, हाँ। सबसे गहरे और बदलने वाले पल वही होते हैं जब हम दर्द और खुशी दोनों को एक साथ महसूस करने की हिम्मत दिखाते हैं। जैसे ग्लेनन ने अपनी टूटती शादी के गम और एबी के लिए नए प्यार के डर और रोमांच को एक साथ जिया। पूरी तरह महसूस करना ही शायद पूरी तरह जीना है।
दूसरी बात।
दूसरी, एक बौद्धिक अंतर्दृष्टि। वो ये कि समाज हमें जाने अनजाने अदृश्य पिंजरों में रखता है। ये उम्मीदों, भूमिकाओं और मान्यताओं के पिंजरे होते हैं जो हमारी असली क्षमता को दबा देते हैं।
और इन्हें पहचानना जरूरी है।
हाँ, इन पिंजरों को पहचानना और अपनी अंदरूनी समझ, अपनी नोइंग पर भरोसा करना ही आज़ादी और एक प्रामाणिक जीवन की तरफ पहला सबसे जरूरी कदम है। ये सिर्फ महसूस करने की बात नहीं, ये समझने की बात भी है।
और तीसरी, एक सार्वभौमिक अंतर्दृष्टि जो हम सब अपनी जिंदगी में लागू कर सकते हैं।
वो ये है कि हम सब मुश्किल काम कर सकते हैं। वी कैन डू हार्ड थिंग्स। हमारी पहली वफादारी, हमारी सच्ची निष्ठा खुद के प्रति होनी चाहिए। दूसरों को खुश करने के लिए खुद को निराश करना, हाँ, दूसरों को निराश करने से बचने के लिए लगातार खुद को निराश करना, ये शायद जिंदगी की सबसे बड़ी त्रासदियों में से एक है।
तो प्रामाणिक होने के लिए परफेक्ट होना जरूरी नहीं है।
बिल्कुल नहीं, बस साहसी होना जरूरी है।
समापन कथन।
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्व विख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए एकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।